नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वावथराद जिले में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव नागरिकों पर नहीं पड़ने दिया। केंद्र ने देश भर में पीएनजी विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी अभियान को इस वर्ष जून तक बढ़ाया। जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। प्रमुख कर और बैंकिंग सुधार भी कल से लागू होंगे। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ की चेतावनी, ईरान के लिए आने वाले दिन निर्णायक होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत में स्थिति नियंत्रण में है। श्री मोदी आज गुजरात के वावथराद जिले के नानी में 19,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव देश के नागरिकों पर नहीं पड़ने दिया।
भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है।
श्री मोदी ने कहा कि उत्तरी गुजरात के डीसा में खोला गया वायुसेना अड्डा पश्चिमी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार के ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रेल मंत्रालय के 10,921 करोड़ रुपए के विकास कार्य और राज्य सरकार के शहरी विकास, जल संसाधन, जल आपूर्ति, सड़क और आवास, जीआईडीसी, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, पर्यटन और जनजातीय विकास विभागों के 8,886 करोड़ रुपए के विकास कार्य शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने साणंद में केन्स सेमीकंडक्टर के ओएसटी संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र द्वारा किया जाने वाला उत्पादन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सकें।
आज महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। देश भर में प्राकृतिक गैस पीएनजी के विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण को इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च माह के दौरान घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस और कैंटीन सहित 31 लाख से अधिक कनेक्शनों को गैस युक्त किया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त भंडार है। जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। ये विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होगी। पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित इस जनगणना में स्वगणना का भी विकल्प उपलब्ध होगा। स्वगणना कल से 15 अप्रैल तक चलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र और दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा तथा सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई तक एक महीने के लिए गृह सूचीकरण और आवास जनगणना आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1 मई से 30 मई तक गृह सूचीकरण जनगणना शुरू होगी, जिसमें स्वगणना 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी। दिल्ली नगर निगम महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए स्वगणना अवधि 1 मई से 15 मई तक है। स्वगणना एक सुरक्षित वेब आधारित सुविधा है। इसके माध्यम से घर घर सर्वेक्षण से पहले 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डिजिटल जनगणना के फायदों के बारे में बताया।
डिजिटल में सबसे पहला फायदा तो यह है कि आंकड़े ज्यादा शुद्ध तरीके से संग्रहित होंगे। जो फिजिकल आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको डिजिटाइज करने में त्रुटियों की संभावना रहती है। जनगणना के आंकड़े हैं उनका प्रकाशन शीघ्रता से संपन्न हो सकेगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नए वित्तीय वर्ष के कल से शुरू होने के साथ ही प्रमुख वित्तीय नियमों में बदलाव सहित कई सुधार लागू हो जाएंगे। एक रिपोर्ट।
6 दशक से भी अधिक पुराना आयकर अधिनियम 1961 कल से नए आयकर अधिनियम 2025 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसे पुराने प्रावधानों को हटाकर जटिल नियमों को सुव्यवस्थित करके और करदाताओं के लिए अनुपालन को अधिक सरल बनाकर कर प्रणाली को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कल से देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देनों के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 कारक प्रमाणीकरण के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास का संशोधित शुल्क भी कल से लागू हो जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति की। बिहार काडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मौजूदा सचिव संजय जाजू को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार को पर्यटन सचिव और श्रीवत्स कृष्णा को अल्पसंख्यक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। रोहित कंसल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की उपस्थिति में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में सुरक्षित असम, विकसित असम के नारे के अंतर्गत 31 प्रतिबद्धताओं का उल्लेख है। इसमें सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने, अप्रवासी, असम से निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने और सभी वास्तविक नागरिकों को भूमि अधिकार प्रदान करने के उपाय शामिल हैं। घोषणा पत्र में 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों और आदिवासी समुदायों को छोड़कर समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव है। पार्टी ने 2 लाख सरकारी नौकरियों और 8वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया है। इसमें ओरू नोदोई सहायता को बढ़ाकर 3,000 रूपये करने और गरीब बच्चों के लिए बालवाड़ी से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा का भी प्रस्ताव है। साथ ही राज्य में एक्सप्रेसवे और वंदे भारत ट्रेन परियोजनाओं में निवेश का भी प्रस्ताव है। केरलम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे। निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी से जुड़ी हमारी इस विशेष श्रृंखला में आज चर्चा कोल्लम जिले के पुनालूर निर्वाचन क्षेत्र की।
केरलम के कोल्लम जिले की पुनालूर विधानसभा सीट पर 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पुनालूर से CPI के सी अजय प्रसाद LDF के उम्मीदवार हैं। UDF ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नौशाद यूनिस को मैदान में उतारा है। NDA के रघुनाथ कामुकुम चेरी 2020 पार्टी के उम्मीदवार हैं। अन्य उम्मीदवारों में बहुजन समाज पार्टी के जोश सारनाथ, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से के महेश और इक्विटी पार्टी ऑफ इंडिया के नेदु मोनकावु गोपाल कृष्णन शामिल हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में CPI के PS सुपाल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल रहमान रंथानी को 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। 2016 के चुनावों में भी CPI के उम्मीदवार के राजू ने यहां 33,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले और कोयला घोटाले के संबंध में कोलकाता पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को तलब किया है। उन्हें 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 17 महिला माओवादी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में आज 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा जिले में 5, कांकेर जिले में 2 और नारायणपुर जिले में 1 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया करीब 7 किलो सोना और लगभग 3 करोड़ रुपए की नगद रकम बरामद की है। बरामद सोने और नगद रकम का कुल मूल्य 14 करोड़ रुपए से अधिक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की रक्षा मंत्री और पेंटागन प्रमुख पीट हेक्सेथ ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष के आगामी दिन निर्णायक होंगे। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से चल रहे अमरीकी इजरायली सैन्य अभियान के बावजूद संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत में तेजी आई है, परंतु रक्षा मंत्री ने संघर्ष में अमरीकी जमीनी सेना की भूमिका से इनकार नहीं किया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यूरोपीय सहयोगियों की संघर्ष में अधिक सक्रिय भागीदारी न निभाने के लिए फिर से आलोचना की और मांग की कि ब्रिटेन और अन्य ईंधन की जरूरत वाले देशों को होर्मूज जल डमरू मध्य से अपना तेल खुद प्राप्त करना चाहिए। इस बीच दुबई के पास लाखों बैरल कच्चे तेल से भरे कुवैत के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है, जिसके लिए अधिकारियों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हवाई रक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ घंटों में ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों और नए ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। देश भर में आज 24वीं और अंतिम जयंती तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। आईपीएल क्रिकेट 2026 में न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वावथराद जिले में लगभग 20,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव नागरिकों पर नहीं पड़ने दिया। केंद्र ने देश भर में पीएनजी विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी अभियान को इस वर्ष जून तक बढ़ाया। जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। प्रमुख कर और बैंकिंग सुधार भी कल से लागू होंगे। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ की चेतावनी, ईरान के लिए आने वाले दिन निर्णायक होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।